آپ کہتے اللہ نہیں سنتا، معذرت ہے آپ نہیں سن رہے اللہ کی، آپ کہتے دعا قبول نہیں ہوتی، سوری کہیے خود سے، آپ اللہ کی استجیبو پہ بات نہیں کرتے. اللہ کیا کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. یہ کمی ہے، تم نہیں میری قبول کرتے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تمہاری طرف سے کمی ہے، میں تو سنتا ہوں، ہم نہیں سن رہے ہوتے. اور اللہ ایک نہ سنے تو بدگمان ہو کے کہتے ہیں میں نے نہیں مانگنی اللہ سے، میں نہیں بولتی اللہ آپ سے، تو نہیں بولتی تو نہ بولو، جاؤ پھر اللہ بھی نہیں تم سے بولے گا. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، آسمانوں سے فیصلہ، ایک تو فیصلہ دنیا کی عدالت نے دے دیا نا کہ خرقو ہو، اور ایک آسمان سے فیصلہ آیا. کہاں آتا ہے، لکھی آیت کا نمبر، الانبیاء 69-70، یہ دل پہ لکھ کر اٹھیے گا جہاں سے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم ورادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. ہم نے کہا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی بن جا. چنانچہ آگ کی فطرت ہی بدل گئی، قوم نے تو آپ کے ساتھ چال چلنے کا ارادہ کیا تھا مگر ہم نے ان کو ہی ناکام کر دیا. اور اسی بات کو سورۃ عنکبوت کی آیت 24 نوٹ کر لیں، ایک اور انداز سے کہا، فانجاہ اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اللہ نے ان کو آگ سے نجات دی، بلا شبہ اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. آپ کے لیے نشانیاں الحمدللہ، کہ وہ آگ جو اللہ کے رستوں میں جلائی جائے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. بڑا مزہ آتا اللہ کے رستے میں تکلیف آئے تو، لوگ باہر والے چیخ رہے ہوں گے ہائے جل گئے، ہائے ٹائم نہیں ہے، ہائے بڑے مصروف ہیں، ہائے ان کے اس وقت نہیں ہے. اس بندے سے پوچھئے تو، ہمارے ایڈمنس میں سے کسی کے بارے میں مجھے کسی نے کمنٹ دیا کہ وہ بڑی ہی بزی ہیں، بہت ہی مصروف ہیں، اور یہ وہ یار آپ کوشش کریں کام ڈیلے کریں یہ وہ. میں پہلے ہی اس بات پہ متفق ہوتی ہوں، لیکن میں نے جب ان سے چیک کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، تو اتنی حیران، کہنے لگی کہ میں تو اب اور ریلیکسڈ ہوں. میں نے کہا نہیں، اصل میں آپ رپلائی کرنے میں دیر کرتے ہیں یا میٹنگز کا ٹائم نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے مجھے کلپس دکھا دی کہ دیکھیں وہ خود نہیں ملتے جن کی میٹنگ رکھنی ہوتی ہے، کوآرڈینیشن نہیں ہو پاتی. میں نے تو نہیں نوکا، یعنی ساری بات کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جس چیز کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا، اگلا بندہ آپ پہ رحم کھا رہا ہوتا ہے. آپ نے کبھی امتحان دیتے ہوئے بچوں کو پڑھتے دیکھا ہے، رات کو جاگ رہے ہیں، کافیاں پی پی کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ میڈیکل کا تیسرا سال ہے چوتھا ہے، آپ کو ترس آ رہا ہوتا ہے اس پہ، وہ بچہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ شکر ہے میں پڑھ تو رہا ہوں، میں نے اچھے نمبر لینے ہیں. شاید اس وقت آپ میں سے بھی کسی کے اوپر رحم آ رہا ہو، مجھے نہیں پتا، گھر والوں میں سے اور آپ میں سے جو ادھر ہیں، جن کو رحم آ رہا ہوگا بےچارے گھر میں ہی ہوں گے. لکھیے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. کبھی لوگوں کی نظروں سے خود پہ ترس کھائیں گے نا تو پیچھے رہ جائیں گے، چھوڑ دیں گے، آپ سب کچھ چھوڑ دیں گے. لوگوں نے تو آپ کے ساتھ اتنے پرسے کرنے ہیں، اتنی تعزیتیں آپ پاس کرنی ہے، موٹی ہو گئی ہو، ہلکے پڑ گئے ہیں، میاں دوسری شادی کر لے گا، بچوں کو ماں نہیں ملنی، یہ کیا ہر وقت پڑھنے 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 پہ لگی رہتی ہو، پھر کیا کریں گے آپ. اور ادھر کیا ہوتا ہے کہ آزر باپ تھا، دنگ رہ گیا، قوم خیرت زدہ ہو گئی، نمرود ششدر رہ گیا، مگر اللہ رب العزت اتنے بڑے کمال کو ان کی آنکھوں کے سامنے لاتے ہیں، لیکن لکھے بڑا بڑا ان کو ایمان کی توفیق پھر بھی نہ ملی. وجہ دو لفظ لکھ لیں، تکبر اور انات، انیمیٹی، اینوی اور کبر، پراؤڈنس. لکھیے، جہاں تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا ہوتا ہے، وہاں سینکڑوں دلیلیں بے سود اور ہزاروں واز بے اثر رہتے ہیں. نہیں مانے، جیسے فرعون نہیں مانا، جادوگر مان گئے نا، فرعون کیوں نہیں مانا، ابو جہل نہیں مانا، باقی کتنے لوگ مان گئے. تو کلام آخری کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل کر اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے، سورۃ عنکبوت آیت 25، وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا بعد میں. تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش صرف دنیا کی زندگی میں اپنی دوستی قائم رکھنے کے لیے کی ہے، مگر تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے کے انکاری بن جاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. और एक दूसरे पर लानत करने लगोगे और तुम सब का ठिकाना दोजख होगा और तुम्हारा कोई मददगार भी ना होगा। लिखिए, जोर पकड़ा गया। आज हम अपनी दोस्तियां बचाने के लिए रब की दोस्तियां छोड़ते हैं। क्या समझ आ रहा है? आयत पे गौर किया आपने? दुनिया में दोस्ती निभानी है ना, कहते क्या करे दोस्ती जो है, मेरी दोस्त नाराज हो जाएगी, मेरी सहेली परेशान हो जाएगी, वो फलां तो मुझे अपने बेटों की तरह है, फिर मैं उसकी खुशी ना करूं तो फिर मैं क्या करूं, और वो तो मुझे बेटियों की तरह है। अल्लाह ने जो जुमला कहा आपने सुना, कोई नहीं है दोबारा सुन ले, कि तुमने अल्लाह को छोड़कर बुतों की परस्ती सिर्फ दुनिया की जिंदगी में अपनी दोस्ती कायम कर रखने के लिए बनाई है, मगर क्यामत के दिन एक दूसरे के इनकारी बनोगे। क्या बनेगा उस दिन? और फिर क्या होता है कि नमरूद मौत के धाने पे, देखिए उसने तो सोचा था कि इब्राहिम को शर्मिंदा करे, इसके साथ क्या हुआ? अब स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है, इब्राहिम आग से बच गए। खुद को खुदा कहलवाने वाला नमरूद अब इस फिक्र में है कि मेरी हैसियत खत्म हो जाएगी, मेरी झूठी खुदाई का पोल खुल गया है, और अल्लाह की जात जो अज़ुल जलाली वाली इकराम है उसकी जात का इनकार करे क्यों? दिल से तो वो भी जानता था कि मेरी खुदाई झूठी है, नकली है। देखिए जिसने नकल मारी होती है उसको पता होता है मैंने मारी हुई है। तो ये जो नकली खुदा और नकली पीर और बुजुर्ग होते हैं उनको पता होता है नकली है, वो हर वक्त इस खतरे में रहते हैं कि हमारा पोल ना खुल जाए। लेकिन फिर आना हट धर्मी, तो एक मुनासरे के लिए उसने बुला लिया इब्राहिम को। नमरूद ये अब आग से निकलने वाले मामला जो कर चुका है, तो क्या हुआ? लिखिए सूरह बकरा 258 है इसका जवाब। अलम तर इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बी अनाताहुल्लाहुल मुल्क। आयत पूरी पढ़ लीजिएगा, तर्जमा क्या है? क्या आपने इस उसके हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया था, इस बात पर कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रब कौन है, और इस बिना पर कि इस शख्स यानी नमरूद को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी और इब्राहिम ने फरमाया मेरा रब वो है जो मारता और जिंदा करता है, इसने कहा मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तू जरा इसे मगरिब से निकाल दिखा। ये सुनकर वो काफिर हक्का बक्का रह गया, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। याद आ गया वाक्या, ये मुनाजरा। उसने सोचा कि चलो रही सही इज्जत जो मेरी है मैं उसको बचाने की कोशिश करूं, और इब्राहिम की बात सुन के मबहूत हो गया। वही था क्या? इसी से लफ्ज़ बुहतान है, जिसपे आप बुहतान लगाते हो तो हैरान हो रहा होता है कि मेरे पे लगाए मुझे तो पता ही नहीं। तो नमरूद पर हक की सारी हुज्जतें कायम हो चुकी, लेकिन ईमान किस्मत में नहीं था। अमल की बात लिखिए, जब दीन की कोई बात समझ आ जाए फौरन लब्बैक कह दे, वरना तौफीक छिन जाएगी। जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बन चुकी थी, बार बार उसे ख्याल आ रहा है कि मेरी हुक्मरानी, मेरी खुदाई, मेरी इज्जत तो गिर चुकी है। और लिखिए कि जो हक से मुंह फेरता है ना, उसके लिए अजाब इलाही क्या आता है? अना रब्बुकुमुल आला कहना। बंदा खुद को रब्बे आला कहता है, अल्लाह उसके साथ क्या करता है? कहते हैं नमरूद की नाक में एक मच्छर दाखिल हो जाता है, सर में शदीद दर्द होता है, मुस्तरब है, परेशान है, और नौकर उसने अपने रख लिए कि जो उसके सर में जूते मरवाते थे, कि जब जूता पड़ता तो चंद लम्हे के लिए आराम होता, फिर दर्द शुरू होता, जूते पड़ते रहते, और कहते हैं कि खुदाई का ये दावेदार जूते खाते खाते मर गया। कई रिवायात में आते कई साल उसके नाक में मच्छर गुजारा। तो याद रखिए या लिखिए कि जिसने अल्लाह के माँ सिवा से रास्ता जोड़ा, झूठी खुदाई का दावा किया, वो जरूर आखिर में जिल्लत और फना के घाट चढ़ेगा, और हकीकी रब वो जो जिंदा है। आप अपने ऊपर लेकर सोचिए कहा है? एक तरफ नजरियाती इख्तलाफ है और सोशल बॉयकॉट है। तौहीद का एक हसीन तकाजा नोट कर लें कि जहां भी अल्लाह की वाहदानियत का इकरार किया जाए और गैरों की अलूहियत और रबूबियत बातिला का इनकार किया जाए, वह इनकार ही नहीं होता बल्कि दुश्मनियां शुरू हो जाती हैं, बल्कि फिर मवाहिद बंदा अल्लाह के साथ और जुड़ता है, जैसे ठुकता है ना कील, ठोकेंगे ना तो वो और पक्का होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी सारी कौम के साथ थी, तो कौम से अब बरात का ऐलान करते हैं डंके की चोट पे कि मैं तुम्हारी इन बातों को नहीं मानता। इब्राहिम इन सारी बातों में थिड़के नहीं, लिखे हम तो इन बातों में कहते हैं कुछ नहीं रह गया, अंदर खोखले हो गए हैं। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या मामला किया? कलिमतुम बाकिया। आयतें लिखिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم. بس इसको लिख लें। وَمِمَّا تَعْبُدُونَ سورة ممتحنة آیت 4-6। तुम्हारे लिए इब्राहिम और इनके मानने वालों में बेहतरीन नमूना है, जब उन्होंने अपनी कौम से बरमला कहा कि हम तुमसे और जिन जिन की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो इन सब से बिल्कुल बेजार हैं। हम तुम्हारे इनकारी हैं जब तक तुम अल्लाह की वाहदानियत पर ईमान न लाओ। हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए बुग़्ज़ और अदावत वाज़ेह तौर पर है। अलबत्ता इब्राहिम की इतनी बात कि अपने बाप से कि मैं आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा और मैं अल्लाह के सामने आपके लिए किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं रखता। ऐ हमारे रब परवरदिगार, तुझी पर हमने भरोसा किया और तुझी की तरफ रजू करते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। ऐ हमारे रब हमें काफिरों के लिए फितना ना बना देना। ऐ हमारे रब हमारी खताओं को बख्श दे, बेशक तू ही गालिब हिकमतों वाला है। बिलाशुबा तुम्हारे लिए इनमें बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की और क़्यामत के दिन की मुलाकात की उम्मीद रखता है। अगर कोई रूगर्दानी करे तो अल्लाह बिल्कुल बेनियाज और हम्द का सजावार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआएं आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये चीज़ें पढ़ने के बाद ज़रूर जुर्रत तो पैदा होगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम से बेजारी की, आपको मुझे करना पड़ेगा। लिखिए, आखिर कब तक वो दुम छल्ले साथ लगाए रखेंगे गुनाहों के और नाफरमानियों के और उसकी खुशी उसकी नाराज़गी उसकी बात मेरी बात। एक दिन इन्ना बुराउम मिनकुम कहना पड़ेगा। ये अमल की बात है। फोकस्ड होता ही वो है जो वन साइडेड होता है। वो कहते हैं ना कि निकलती हैं दुआएं उनके मुंह से ठुमरियां बन के। गाने की आदत भी है और मस्जिद में जाने का शौक भी है। ये बीच का इंटरफेस रहता है कुछ अरसा कुरान पढ़ने के बाद, अगर ये जम गया तो इसी का नाम निफाक है जी। सूरह मुनाफिकून वाले समझ लें, कुछ अरसा रहता है। बच्चा चलने से पहले गिरता है, बैठता है, क्रॉल करता है, फिर भाग जाता है। तो अगर बच्चा साल दो साल का अगर अभी गिर ही रहा है और क्रॉल कर रहा है तो इसका अंदर क्या हैंडीकैप है? हमारा हैंडीकैप ईमान और अमल है। इस वक्त उसको भी राजी, उसको भी ये नए बच्चों को अच्छा लगता है। आप बुढ़े तोतों को कैसे ये बात अच्छी लग गई कि आप गुनाह की महफिलों का हिस्सा बनकर आए और फिर कहते हैं मजबूरी बड़ी है, अल्लाह को छोड़ के सबको रख ले जाइए, सब आपसे खुश हो गए तो खुशियां मनाइएगा। और एक जगह नहीं लिखे, एक और जगह यही बात सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत 26 से 28 अल्लाह ने एक और रंग में बयान कर दी, मैं तुम सबसे बेजार हूं। अपने वालिद और कौम से इब्राहिम ने फरमाया, जिनकी तुम इबादत करते हो मैं इनसे बेजार हूं सिवाय ज़ात के जिसने मुझे पैदा किया और वो ही मुझे हिदायत देगा। इसको हाईलाइट कर लें, इतना प्यारा जुमला है ये तौहीद वाले दिल का, अल्लाह से प्यार करने वाले बंदे का एक जुमला होता है, इल्लल्लज़ी फ़तरनी फ़इन्नहु सयहदीन, बस वही मुझे राह दिखाएगा। वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी अक़्बिही लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह कहते हैं इब्राहिम ने ये प्यार से कहा कि मेरा रब मुझे रास्ता दिखाएगा क्योंकि उसने पैदा किया, तो अल्लाह ने क्या किया, बस आपने उसको अपने पिछलों के लिए कलमे बाकिया बना दिया ताकि वो शिर्क से बाज आते रहे। ये है भाई इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा। ये लव स्टोरी है, हमने तो लव स्टोरी फिल्मों में देखी ना, कुरान सच्चा लव दिखाता है। आगे जाकर एक दिन आपके साथ इस पे भी बातें होनी है इंशाल्लाह। ये खिल्लत का मुकाम ऐसे थोड़ी मिलता। अल्लाह अकबर कबीरा। खैर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से निकाल दिए गए थे। निकलते हुए उन्होंने बाप से वादा किया था कि मैं आपकी बख्शिश की दुआ करता रहूंगा, लेकिन जब उनको यकीन आ गया कि यह हिदायत उसकी किस्मत में नहीं है तो अल्लाह का पक्का बागी है, तो इस वादे से भी बाज आने का इजहार किया। सूरह तौबा लिखी आयत नंबर 114, वमा कान इस्तिग़फ़ार इब्राहिम अली अबीहि इल्ला अम मौइदतिहि वादहा इय्याहु फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाहि तबर्रा मिन्हु इन्ना इब्राहिम अलअव्वाहुन हलीम। तीसरी आयत दी है मैंने आपको जिसमें तीन दफा कुरान में इब्राहिम ने तबर्रो की बात की है। हमसे नहीं होती ये तबर्रो, हमारा गुजारा ही नहीं होता इन लोगों को छोड़े बगैर। सबके बगैर हम नहीं रह सकते, बस एक अल्लाह है जिसके बगैर रह रहे हैं तो फिर यही तो रहेंगे, फिर उससे सकते भी रहेंगे, फिर रोएंगे, फिर धोएंगे, फिर गम, फिर हमारी जिंदगियों में जो हो रहा है वो हम सब जानते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, इब्राहिम अपने बाप से किए गए वादे की वजह से उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहे। जब बाप के लिए वाजे हो गया कि ये तो रब्बे ताला का दुश्मन है, तो उन्होंने भी इसे बेजारी इख्तियार कर ली। बिलाशुबा इब्राहिम बड़े नरम दिल तहम्मुल वाले थे। ये कोई आसान है, ये है रिश्तों का इम्तिहान, ये है रिश्तों की तराजू। और सुन लीजिए कि रोज़े महशर उस बाप का फिर क्या अंजाम होगा, आज़र का हशर क्या होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुलासा बता देती हूँ, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपने वालिद को इस हाल में देखेंगे कि मुंह पर स्याही होगी और गर्दो गुबार चढ़ा होगा। आप अपने बाप से फरमाएंगे, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मेरी नाफरमानी ना करो? तो बाप के कहा, हाँ इब्राहिम, आज मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर इब्राहिम अपने रब से कहेंगे, ए अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया था कि क़यामत के दिन तुझे रुसवा नहीं करूंगा, इससे बढ़कर मेरी और क्या जिल्लत होगी कि मेरा बाप जलील हो रहा है और आपकी रहमत से महरूम हो रहा है। देखिए, अपना ताल्लुक लाए, बाप के लिए नहीं कह पा रहे, अपना ताल्लुक। इन्नहु काना बी खफिया, पिछले सेशन में पढ़ा था आपने, वो मेरे साथ बड़ा प्यार करता है, मैं अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे अब्बा जी आपकी सिफारिश कर दूंगा अल्लाह से। ये ताल्लुक बनाया हो तो फिर बंदा ये सिफारिशें करता है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैंने काफिरों पर जन्नत हराम कर दी है। फिर हजरत इब्राहिम से कहा जाएगा, जरा पाओ के नीचे देखो, वो देखेंगे तो एक नजासत से लुथड़ा हुआ बिज्जू, आपको पता है बिज्जू क्या होता है? कब्रों में रहते हैं बिज्जू, चूहे की तरह का मोटे मुंह वाला एक कुचूहा, और किरला का नाम सुना है आपने? कुछ इस किस्म, उफ, बहुत खतरनाक जानवर है। न्योला सुना है? ये न्योले की टाइप की चीज है, सांप को खा जाता है ये। बिज्जू की नजर आएगा और आप उसे पकड़ करके ना पाँव से ऐसे जैसे चिमटी से पकड़कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना मुश्किल होता है ये वक्त रिश्तों को। देखिए, अपने प्यारों को अल्लाह का प्यारा ना देखकर दिल जलना चाहिए दुनिया में, वरना आखरत में और बुरा होगा। अल्लाह ने शक्ल क्यों बदली उनकी कि इब्राहिम की शर्मिंदगी ना हो, कि इसकी शक्ल बदल दो। वो आज़र को इंसानी शक्ल में होता फिर बुरा लगता। अल्लाह अकबर। और यहाँ से फिर इब्राहिम की जिंदगी का सफर हिजरत शुरू होता है। नशीब व फराज आते हैं, जब आज़र और नमरूद और कौम पर तबलीग की हर हुज्जत कायम हो गई, अल्लाह ने कहा छोड़ दो इनको, ये इस काबिल ही नहीं है। आपको हिजरत का हुक्म हुआ। क्यों हिजरत होती है आपको पता है? अल्लाह अच्छे बंदे को क्यों निकालता है उस कौम से? तो इब्राहिम को निकाला ताकि बाकी कौम पर अजाब इलाही मुसल्लत किया जाए। आपने अपने साथ बीबी सारा को लिया, हारान की बेटी थी, भतीजे थे लूत, साथ लिया और चल पड़े। इसका जिक्र लिख लें जल्दी से, साफ़त 99। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, अनकरीब मेरी रहनुमाई फरमाएगा। और अलम्बिया 71, व नज्जैनाहु व लूतन इला अर्दिल लती बारकना फीहा लिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इसको और लूत को इस मुकद्दस जमीन की तरफ भेज कर निजात दिलाई, जिसमें हमने जहानों वालों के लिए बरकतें डाल रखी हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ गए वो शहर, दरिया फरात के किनारे चलते चलते हैरान शहर में चले गए। वहां तबलीग की कोई असर नहीं हुआ। वहां से उठे, मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। वहां से उठे तो फलस्तीन पहुंच गए। वहां आकर भेड़ बकरियां रखी, उस पे गुजरान होता था, बहुत इजाफा हुआ, अल्लाह ने बहुत बरकत दी। मगर कहत की वजह से सब्जा खत्म हो गया, तो भतीजे यानी लूत बिन हारान को, जिनको अब नबूवत मिल चुकी थी, यहां तबलीग के लिए छोड़ा और खुद मिस्र की राह ली। यहां का फिरौन उस दौर में जो था, उसका नाम लिख लीजिए, सनान बिन इलवान, कोई भी हो बस सिनान है, बहुत बदकुमाश था, लोगों की खूबसूरत बीवियों को छीन लेता और खामदों को कत्ल कर देता। तो यहाँ एक आजमाइश आई, इज्जत और नामूस की आजमाइश थी। लेकिन अल्लाह तो है ही वो जो अपने प्यारों की इज्जतों की हिफाजत करता है। उस बादशाह को जब पता चला कि एक काफिला आया जिसमें एक बड़ी खूबसूरत औरत है, तो इसने अपने चीलों को कहा कि जाओ इब्राहिम को बुला कर लाओ और उसे कहो कि अपनी बीवी मेरे हवाले कर दे। पूरा वाक्य है बुहारी और मुस्लिम का, डिटेल्ड वाक्य। आप हजरत सारा के पास आना चाहा उसने बुरी नीयत से, और सारा का हुसन सब जानते हैं, मारूफ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस वक्त एक ही बात सूझ सकती थी, और वो क्या थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको अपनी बहन कह दे। बहनों को छोड़ देता था, बीवियों को पकड़ लेता था। तो बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में आता है कि जब बीबी सारा को इसके पास बुलवाया गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारा, मैं आपको अपनी बहन बता चुका हूँ, आप मुझे झूठा ना करना। यानी वो पूछे कि तुम्हारा कौन है तो कह देना। खैर, हजरत सारा बादशाह के पास पहुंची तो इसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसका हाथ शल हो गया। उसने बीबी सारा से दुआ की, अपील की कि आप मेरे लिए दुआ कर दें। हजरत सारा ने कहा अल्लाह इसको ठीक कर दे, उसका हाथ ठीक हो गया। 3 बार ये काम हुआ। उसके साथ उसको यकीन आ गया, ये मामूली औरत नहीं है, ये बड़ी पहुंची हुई है, इसकी दुआ से मैं ठीक हो रहा हूँ। तो उसने ना सिर्फ ये कि बीबी सारा को छोड़ा, बल्कि अपनी बेटी हाजरा को भी एक लौंडी के तौर पर आपकी खिदमत के लिए वक्फ किया। वहां से फिर हजरत हाजरा हजरत इब्राहिम की जिंदगी में आई। आप मुसल्ले पर नमाज अदा कर रहे थे और अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत की दुआएं कर रहे थे। जब आप दुआ से फारिग हुए तो देखा कि बीबी सारा हैं और उन्होंने सारी कहानी सुना दी कि अल्लाह ने मुझे उसके शर से बचा दिया और खिदमत के लिए ये औरत दे दी। इस पे आपने अल्लाह की हमद बयान की। तब हज़रत इब्राहिम के साथ दो औरतें आ गईं, एक सारा और एक हाजरा। इस पे बहुत ना सोचिएगा, आपको कुछ बातें आज के सिनेरियो में नहीं समझ आ सकती उस दौर की कि ये बातें सच है। इसके बाद आप यहाँ से निकले और अर्ज़े फ़लस्तीन में अल असबो सीन बा आइन मुकाम के एक जगह पर आए। ये सहराए शाम के जनूब में वाक़ जगह है। इधर लूत अलैहिस्सलाम को जब आपकी वापसी की खबर मिली तो वो भी फिर आकर इसी मुकाम पे आपको मिले। क्या नाम है? असबो। कुछ अरसा यहाँ रहे, फिर आपने हज़रत लूत को तबलीग के लिए फ़लस्तीन का एक इलाका मोतफिका, जिसको कुरान ने कहा है सदूम नाम है और उसके सबर्ब्स हैं यानी नवाही बस्तियाँ, वहाँ भेजा। और आप हिजरत करके हेब्रून में आ गए। बाद में इस जगह का नाम अल खलील पड़ गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल की हो चुकी थी। अल्लाह का हुक्म आ गया कि अपना खतना कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्राहिम ने 80 साल की उम्र में तीशे, उस तरह कह लीजिए, उससे फिर अपना खतना खुद किया। और याद रखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये वाक़यात आपको मुझे बहुत कुछ पढ़ने करने सुनने पर मायल कर रहे हैं। असल बात यह कि हम इसके ऊपर रहें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये एक दौर बहुत क्रिटिकल दौर था। आप देख ही रहे हैं कितने अप्स एंड डाउन्स हैं। तो यहाँ थोड़ी सी बात कर दूँ, यहाँ पे आज हमारा पूरा हो जाएगा सेशन। और वो क्या कि सच बोलते हैं वो, झूठ की आदत नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जो दो झूठ बात हुई ना, तो मैं इसकी क्लैरिफिकेशन अभी दे दूँ। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि क़यामत का दिन होगा, अम्बिया अलैहिस्सलाम का उम्मतों को रब के सामने सिफारिश करने से इनकार वाली हदीस आप सुन चुके हैं, अपनी अपनी लफ्जिश बयान करके उज़र बयान करेंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, नहीं मैं सिफारिश नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तीन झूठ बोले थे। वो कौन से थे लिख लें, इन्नी सकीम आज के सेशन में आया, बल फालहु कबीरुहुम आज के सेशन में आया, इनके बड़े ने इनको मारा, और तीसरा यही जो अपनी बीवी को बहन कहने का एक मामला था। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में आता है आपने फरमाया, लम युकज्जिबु इब्राहीम नबीउल्लाहि कत्तुन इल्ला सलासन, कि इब्राहिम ने तीन इन झूठों के सिवा कभी नहीं बोला, दो अल्लाह के लिए और एक अपनी ज़ात के लिए जिसमें बीवी को बहन कहना था। इस पे बाज़ लोग एतराज़ करते हैं, जी बुखारी में ऐसी हदीसें और असमत अम्बिया की बातें हैं। तो कुछ बातें आपको मुझे समझ आने की नहीं है, नहीं आ सकती कोई बात नहीं, लेकिन तावीलात मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है ये तौरिया था, जब बड़े खतरे से बचने के लिए झूठ बोला जाए ऐसा जिसमें किसी का नुकसान ना हो पर आप उस चीज़ से फ़ायदा ले लें, इसको तौरिया कहते हैं। बीमारी को लोग कहते हैं कि ये ज़हनी बीमारी पे ले लीजिए, मुशरिक थे। बड़े की तरफ नस्बत लोग अल्लाह की तरफ भी ले आते हैं। दोबारा ये तवील बहस है जिस पर इस वक्त ज़रूरत नहीं है बात करने की, लेकिन याद रखिए कि इब्राहिम को अल्लाह ने इसके बाद इतना कुछ दिया, लेकिन क़यामत के दिन इब्राहिम को इसका खौफ है। आप में अपने अमल पर लिखिए हमारे कितने झूठ हैं। इब्राहिम के तो ये तीन ही नहीं हजम हो रहे लोगों को, तो हमारे 3,333 और उससे ऊपर होंगे एक साल के। इस पर बहस मैं नहीं पढ़ रही, वरना इसकी बहस मौजूद है मेरे पास, लेकिन वक्त पूरा हो गया इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती। लेकिन अपने झूठों को देखिए, दरमंदगी और कैसी बातें, अल्लाह अकबर। इब्राहिम का पूरा अंदाज ही तौरिये का है, उसी में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बहरहाल इब्राहिम को अल्लाह ताला क़यामत के दिन सुरखरू कर देगा। अल्लाह ताला आपको मुझे झूठ से बचाए, सच्चाइयों पे ले आए। ये था आज का सेशन जिसमें आपके मेरे लिए शायद 101 ना भी हो तो कम से कम 50 को तो सीखने की बातें थी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अगला वाक्या नेक्स्ट कल इसकी सीरीज़ का चलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको मिस ना कीजिएगा, जो असल में इन ज़िलहज के 10 दिनों से भी मुतल्लिक है। पहले नहीं बता रही लेकिन आपको फ़ायदा होगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।